इतिना मिने नमस्ते सारस्वत देवा गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशपारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कोटि प्रयास सुर बाल का हरे उपासने स्वे हृदय छिद्र वत्सतः स्वस्यात्मनः शक्युरशेष देहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः कहा क्या अति प्रयासः अति परिश्रम असुर बालकः हे असुरों के पुत्र हरे हे भगवान के उपासने भजन में स्वे हृदय अपने हृदय में छिद्रवत आकाशवत स्वतः जो है उनकी स्वस्य अपने आत्मनः अपना सखी हो जो सखा है उनकी उपासना में अशेष देहिना समस्त देहधारियों के सामान्यतः जो सबके लिए सामान्य है किम क्या लाभ है विषयोपपादन ही भोगों को जुटाने और भोगने में तो श्री प्रहलाद महाराज भगवत भजन और सांसारिक भोगों का अर्जन दो के विषय में बोल रहे हैं कि भगवान की उपासना में कोई परिश्रम नहीं है भजन में। पहली बात तो यह है कि भगवान को खोजना नहीं है, वो मिले हुए हैं, हैं। कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, क्या करें, ये करें, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं तो जैसे आकाश आपको सुलभ है वैसे भगवान हृदय में ही है, वे दूर नहीं है। और जगत का जो भोग आदमी चाहता है वो मिला हुआ नहीं रहता है, उसको जुटाना पड़ता है, बहुत परिश्रम करके पैसा कमाना पड़ता है, पैसा कमा करके घर बांधना पड़ता है, घर बांध करके और सामान जुटाना पड़ता है, बहुत परिश्रम पड़ता है, वो रहता नहीं है। जब जीव का जन्म होता है इस शरीर में तो और दुनिया के सारे सामान उसी समय उसके साथ नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं जन्म लिया तो कार भी साथ में है और कंप्यूटर भी साथ में है, सब चीज है, नहीं, इसको जुटाना पड़ता है बाद में। पढ़ाई लिखाई भी खुद एक बहुत भारी परिश्रम है, आपने देखा होगा बच्चे पढ़ने जाना नहीं चाहते हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए स्वतंत्र तो खेलेंगे, कभी नहीं जाएंगे पढ़ने, है ना। एक दबाव जैसा अनुभव होता है, हम लोगों ने इसका अनुभव किया है। जिस दिन छुट्टी होती थी स्कूल नहीं जाना पड़ता था उस दिन लगता था आज साम्राज्य मिल गया, आज बिल्कुल ठीक है। तो पढ़ाई करो कुछ साल तक, पढ़ाई के बाद फिर ऐसे करो, ये करो, कंपटीशन में भाग लो, ये करो, ये जुटाओ, वो जुटाओ, तब तक बूढ़ा हो जाता है, तब तक संसार छोड़ने का समय आता है। तो भगवान मिले हुए हैं और ये विषय जो है वो नहीं मिले हुए हैं और न तो इच्छा के अनुसार मिलेंगे कभी। जितनी इच्छा है उसके अनुसार संसार के भोग नहीं मिलेंगे। अगर किसी को 1 किलो पानी की आवश्यकता है तो उसको कितना मिलता है पानी शास्त्र में लिखा गया है। सीकर, सीख समझते हैं, नीम के पेड़ में जो पतली टहनी होती है सीख उसको कहते हैं। एक सीख को लोटा में ऐसे बोर करके यार आप छिड़केंगे तो हजारों टुकड़े जल के होंगे छोटे छोटे, तो एक को सीकर कहते हैं। तो हमको चाहिए 1 लीटर पानी और दिया कितना जा रहा है 1 सीकर बस, और इतने में हम सोचते हैं मिल गया बहुत सुख, लेकिन तृप्ति नहीं होती। तो जीवन भर भोगों के अर्जन में ही जीव लगा रहता है। तो प्रहलाद महाराज कहते सामान्यतः किम विषयोपपाद नहीं, विषय भोग की वस्तुओं को जुटाने और भोगने से क्या फायदा, हो तो सुकर कुकर को भी उतना भोग मिला हुआ है जितना बहुत फर्स्ट क्लास की पढ़ाई करके इंजीनियर बनकर डॉक्टर बनकर के जो सुख प्राप्त करता है आदमी, वो बिना पढ़ाई के कुत्ते आदि को भी सुलभ है, बल्कि कुछ ज्यादा सुख उनको होता है। कुत्ता राख पर सो लेता है आनंद से, और हो सकता है कि बहुत पढ़े लिखे धनी आदमी को एसी रूम में भी नींद न आ रही हो, चिंता से मर रहा है, तो वह भी सुख नहीं मिला जो सामान्य जीवों को मिलता है। और कितना परिश्रम करके उतना सुख मिलता है पशुओं के बराबर, बहुत बहुत परिश्रम, इसकी कोई सीमा नहीं। पशु समाज में या पक्षियों के समाज में कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना तो एयरपोर्ट है उनका, न कुछ है, न कोई कंप्यूटर चला रहे हैं, न कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं घूम रहे हैं बड़े आनंद में, वो भी देखे जाते हैं। कभी कभी गांव में आपने देखा हो कुत्ते इतना आपस में खेलते हैं सवेरे उठ करके, उतना आदमी सुख से नहीं रहता। आदमी से पूछे क्या समाचार है, ये ऐसे है ऐसे आदमी करता है, दुख ही सुनाता है। लेकिन कुत्ते सवेरे उठते हैं तो एकदम नाचते हैं घूमते हैं खेतों में, इसका मतलब ज्यादा सुखी है ना, ये बिल्कुल सत्य बात। तो क्या विषय का उत्पादन करके करोगे प्राप्ति, बहुत कष्ट है। और भगवान की भक्ति में कष्ट नहीं है, सबसे इजी और सबसे जरूरी काम है वो है भजन, इसलिए करो। भगवान हमारे सखा हैं, बंधु हैं, सब कुछ है, उनको जानना है। तो क्या परिश्रम है विषयों के अर्जन में, इसको बड़े विस्तार से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। रायः कलत्रं पशवः सुखादयो गृहा मही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियं चलः। एक तो विषयों के अर्जन में बहुत भारी परिश्रम है और दूसरी बहुत बड़ी कमी है कि ये क्षण भंगुर है, ये चला ये चलायमान है, रहेंगे नहीं, और जीव जो है वो अचल है। उसको जो शरीर दिया गया है यह शरीर क्षण भंगुर है, उसकी आयु क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाली है। तो बताइए जो जीव नित्य है और स्वयं ही आनंदमय है उसको ये सब वस्तुएं क्या सुख देंगी, जो स्वयं अनित्य है क्षण भंगुर है और दुखमयी है। जैसे राय का अर्थ है धन, धन कलत्रम, कलत्र का अर्थ पत्नी, धान या स्त्रियां, पशु जैसे हाथी घोड़े गाय, ये पशु कहे जाएंगे, और सुतादय पुत्र आदि, मतलब पुत्र भाई आदि, गृहा अपना बहुत सुंदर घर, और मही पृथ्वी, कुंजर हाथी, कोष खजाना, और भूत राज्य, जितने भी ये अर्थ और काम हैं ये सब चलायमान है। और जीव जो है मर्त्य शरीर में है, मरने वाले शरीर में है, तो इन भोगों के साथ उसका वियोग होगा ही, निश्चित है। अगर मान लीजिए भोग बहुत दिन टिक जाते हैं तो वो खुद ही मरने वाला है, वो चला जाएगा। अब भोगों की दशा ये है कि आप एक बस पर है, मान लीजिए कार में है, और भोग जितने हैं वो एक ट्रेन में है, और ट्रेन भी अब खुलने वाली है, और आप उसमें कितना साथ रहेंगे। मान लीजिए आप अपने कार में हाथ निकाल कर भोग ले रहे हैं, तब तो वो ट्रेन ही छूटने वाली है, आपकी कार भी जाने वाली है, कितना देर संग रहेगा। महाभारत में कहा गया है कि धनम ही पुरुषो लोके, पुरुषम धनमे वही अवश्यम एकम तेजति तस्मत किम धन चिंतय। धन है और धन का पोजेसर धन, दो वस्तुएं हैं, तो धनम ही पुरुषो लोके। कभी कभी देखा जाता है कि पुरुष ही धन छोड़कर चला गया है, धन पड़ा रहता है, अथवा धन को छोड़ करके पुरुष को ही छोड़कर धन चला जाता है, पुरुष जीवित रहता है और तब तक उसका राज्य चला जाता है, यह धन जो है वो चला जाता है। तो चाहे धन हमको छोड़े या हम धन को छोड़े, दोनों में से एक को तो छोड़ना ही है, तो एक को छोड़ा तो छोड़ना हो ही गया, धन को ही हमसे छीन लिया जाए चाहे हम ही धन को छोड़कर चले जाए, एक ही बात हुई ना, वियोग तो होगा ही। स्त्री सुतादय, स्त्री पुत्र धन और पशव पशु, सबके पास पशु है। जैसे आप लोगों के पास कार है तो कार में कई घोड़े हैं, हॉर्स पावर है, उसको पशु ही मानेंगे। पहले के पशुओं पर हम चढ़कर चलते थे घोड़े पर, तो अब एक कार मान लीजिए 10 हॉर्स पावर की है तो 10 घोड़े आपके गैराज में है, है ना, क्योंकि आखिर घोड़ों के पावर से ही तो काम लिया जाता था। हम लोगों के भारत में किसी के बल का माप हाथी से किया जाता था, जैसे भीमसेन में 10,000 हाथी का बल था, या और किसी के बल का माप होता था हाथी के, एलिफेंट पावर, लेकिन अंग्रेज लोग हॉर्स पावर से नापते हैं किसी चीज को। तो भारतवर्ष में भी जाकर के हॉर्स पावर चालू कर दिए ये घोड़े से सब चीज नापते हैं। तो अब जितने हॉर्स पावर की मशीन आपके घर में है, इसका मतलब उतने पशु उतने घोड़े हैं, लेकिन ये सब छूटेंगे, ये सब छूट जाएंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे या आप ही छोड़कर चले जाएंगे इनको। और कुंजर पशुओं में भी हाथी को अलग कहा गया, हाथी खजाना पृथ्वी सब क्या सुख देंगे जीव को, जीव स्वयं ही मर्त्य शरीर में पड़ा हुआ है, दुखमय स्थिति में है, उसको क्या सुख दे सकती है वस्तु, खुद ही नष्ट होने वाली है। एक तो प्राप्त नहीं है, प्राप्त करने में बहुत भारी परिश्रम है, और प्राप्त हो भी गई तो कब संग छोड़ जाएगा कोई ठीक नहीं रहता। एक सत्य घटना है भारतवर्ष की, एक बार एक महात्मा ने बहुत सुंदर आश्रम बनवाया, उत्तर प्रदेश की घटना है, खूब सुंदर आश्रम मंदिर बनकर तैयार हुआ, और उस दिन ओपनिंग था आश्रम का, प्रवेश था, और चूल्हा जल रहा था, सब पूड़ियां बन रही थी, बहुत प्रकार के प्रसाद सब लोग खा रहे थे, और प्रवेश किया गया, प्रवेश हो गया था, सब लोग अभी प्रसाद खा रहे थे, तब तक वो महात्मा जी मर गए। प्रवेश हुआ उसके 10 मिनट बाद मर गए। तो क्या किया वो आश्रम, वो घर वही आश्रम को छोड़कर चल दिए। यह घटना कल्याण नामक पत्रिका में छपी थी, मैं पढ़ा था, बिल्कुल सत्य घटना उसमें लिखी गई थी। तो कोई ठीक नहीं, एक तो जुटाइए इतना परिश्रम करके, और जुटा तो फिर भोग नहीं सकते। जदर्थ यह कर्माणी विद्वन मानी असकृत न रह करोति अतो विपर्यासम अम्बोघम विन्दते फलम। तो कोई मनुष्य जो विद्वन मानी, अपने को विद्वान मानता है, अपने को समझदार मानता है, लेकिन फिर भी वह यदि भोगों के लिए ही कर्म करे हमेशा, तो उसको तो विपरीत फल मिलता है, अम्बोघम विपर्यासम विन्दते फलम, उल्टा फल पाता है। जितनी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं के विपरीत उसको फल मिलता है। इच्छा होती है कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन पूछिए उससे कि आप इसे सुखी हो गए तो कहता था मत पूछिए, मर गया है, इसके चलते ये हुआ। हम लोगों में ये परंपरा है, कहीं से किसी समाचार पूछिए तो एक बार आदमी कह देता है सब ठीक है, क्या समाचार है, तो सब ठीक है। लेकिन ठीक है कि व्याख्या जब करने लगता है तो केवल अठीक केवल दुख है, व्याख्या ठीक विपरीत होती है। अगर और 10 मिनट 15 मिनट या एक घंटा बैठ जाइए तो सुनिए उनका दुख, पूरा दुखी है जीवास्तु, उसकी इच्छाएं पूरी हो नहीं रही, न होंगी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि विद्वान मानी, विद्वान अपने को मानने वाला आदमी और केवल भोगों को अर्जन में काम करता रहता है तो उल्टा फल होता है। और कर्म किस लिए मनुष्य करता है, सुखाय दुख मोक्षाय, सुख के लिए कर्म करता है और जो दुख आ गया है उसे मुक्त होने के लिए। सुख के लिए कर्म करना और दुख से मुक्त होने के लिए कर्म करना, दो उद्देश्य। अब जैसे कोई अस्पताल गया तो सुख के लिए नहीं गया, वो दुख से मुक्त होने के लिए गया। अस्पताल में गया या कहीं दूसरी जगह ऐसे तो दुख से मुक्त होने के लिए, लेकिन दुख से मुक्त नहीं होता और न तो सुख मिलता है। जितने भी कर्मी हैं उनका संकल्प यही है, यह संकल्प यह कर्मीड़ा, लेकिन तद अपना तिहया दुखम अनिहया सुखाय। लेकिन देखा जाता है कि भोगों के लिए जो व्यक्ति प्रयास किया और भोग मिले तो उस समय जितना उस समय वो सुखी नहीं रहता है, दुखी होता है, बल्कि जब भोग नहीं थे और नहीं प्रयास किया था तो उस समय ज्यादा सुखी था, इसमें बताया गया है। अनिहया सुखाय, जब अनिहा में था, भोगों की इच्छा नहीं थी और भोगों के लिए कोई काम नहीं करता था तो सुख नहीं था। जैसे लड़के दुख में नहीं है, लेकिन जिन जो लोग कमा कमा करके रखे हैं चाहे बहुत भोग रहे हैं वो सुखी नहीं है। है ना, प्रकट बात। अभी जो कमाए नहीं है और अभी जिनको बहुत बड़ी लालसा नहीं है वो लोग खेलते हैं आनंद में, वो सुख आवृत, सुख से युक्त रहते। और जिन लोगों को धन हो गया है, सब हो गए, बड़े बड़े पदों पर हो गए हैं, वो लोग रात दिन चिंता में रहते हैं, बहुत भारी चिंता लगी रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि भोगों में सुख नहीं है। तो जब जिस शरीर से व्यक्ति भोग चाहता है, कामन कामयते काम्ययी, विविध प्रकार की सकाम वासनाओं से प्रेरित होकर जीव जो कर्म करता है, विषयों को जुटाता है, किस लिए, जदर्थम यह पुरुष, शरीर के लिए कि मैं खूब खाऊंगा, मैं पहनूंगा, इस शरीर को सुख से रखूंगा, इसी के लिए सब सामान है ना। आप देखिए अमेरिका के स्टोरों में जितने सामान है, आत्मा के लिए एक भी चीज नहीं है ना। वृंदावन में बहुत चीज आत्मा के लिए है, जैसे ये बीड बैग है, ये देह के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है। आत्मा के लिए चीजें मिलती हैं वृंदावन में, लेकिन इधर के स्टोरों में एक भी चीज आत्मा के लिए नहीं है, सब देह के लिए। जदर्थम, जदर्थम का अर्थ है शरीरार्थ, शरीर के लिए सारा भोग जुटाता है, सब करता है। और वह शरीर क्या है, स वही देहस्तु कारक क्यों, जबकि वह देह पारक्य है। पारक्य का अर्थ है दूसरे का भोग्य है, कुत्ते और सियार का भोजन है यह, और कुत्ते और सियार के भोजन को विविध तरह से सजाता है आदमी और इसका नाम रखता है सिंह, पांडे, शर्मा, पटेल और ये नाना प्रकार इसका नाम रखता है, लेकिन अंत में है क्या। देखिए अंत में जो वस्तु जिसके काम में आती है उसी की वो वस्तु मानी जाती है। जैसे स्टोर में हम लोग देखते हैं इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सामान सब कुछ, लेकिन कंज्यूमर जो है वही उसका वास्तविक अधिकारी माना जाता है। बनाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, बेचने वाले को उस वस्तु से मतलब नहीं है, उस वस्तु से कुछ पैसा कमाने की भावना है उसको। कोई बनाया, बनाकर भेज दिया, पहुंचाने वाला, बनाने वाला कुछ पैसा लेगा, पहुंचाने वाला, स्टोर में रखने वाला, बेचने वाला, लेकिन उस वस्तु का जो कंज्यूमर है वही उसका अधिकारी माना जाएगा। तो शरीर तो हम लोगों का चल रहा है, इसे हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यह शरीर किसके काम आएगा? अगर इसका परीक्षण करना हो तो कोई मृतक शरीर रख दीजिए कहीं जंगल में या कहीं रोड पर, तो इसके जो अधिकारी हैं कुत्ता, गिद्ध, सियार, वे बिना निमंत्रण के आ जाएंगे, क्योंकि वो इसके अधिकारी हैं, वे कंज्यूमर हैं इसके, और सब खा जाएंगे। तो इसको पारक के कहते हैं। जिस देह के लिए आदमी ये सब काम कर रहा है आत्मा को भूल करके, वह देह स्वयं ही दूसरे का भोजन है, और भंगुर ये क्षीण होने वाला है, जाति ये चला जाता है, और उपायति च आत्मा कभी ऐसे शरीर को ग्रहण करता है बाद में, मतलब दूसरे शरीर, तो आत्मा इसको ग्रहण करता है और फिर छोड़ भी देता है, और इसी देह के लिए आदमी इतना परिश्रम कर रहा है। क्या क्या घर में भी लोग ला ला करके रखते हैं देह के लिए। ऐसे हमने देखा है कि हमारे भारत के लोग इतने भोगों में प्रवीण नहीं है, क्योंकि उनके ब्लड में है त्याग, इतना भोग पर इंक्लाइन नहीं रहते, क्योंकि बारंबार उनको बताया जाता है कि देह क्षणभंगुर है, ये दुनिया क्षणभंगुर है, ये है वो है, तो वो संस्कार पड़ता रहता है। लेकिन कहीं कहीं मैं देखा हूं किसी किसी के घर में जिसके में संस्कार नहीं है, अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं। एक घर में मैं गया था लॉस एंजलिस में, एक माता जी थी, उनकी कहीं पुत्री थी, तो घर में 20, 21, 22 ऐसे बिल्लियां रखी गई थी। आजकल मिलती है ना, पता नहीं उसको किस चीज से बनाते हैं, बिल्ली या कुत्ता बना बना करके रखते हैं बनावट। तो 20 कुत्ता और बिल्ली थे, तो मैं पूछा कि इतना क्यों रखे हैं, तो उनकी माता जी कहती है ये छोटी थी तो ये लाई थी, वो लाई थी, और मैं कहती हूँ कि ये फेंक देना चाहिए गार्बेज में, तो कहती है ना सब रहेंगे, और पूरा जगह घेरे हुए थे सब। और बता रहे थे कि ये तो इन कुत्तों को और बिल्लियों को, बनावटी कुत्ता बिल्ली है, उनको लेकर खेलती है, सोती है, ऐसे वैसे, हमको तो देखने में भी घृणा हो रही थी। और कभी कभी अरे जब रखना ही है तो हाथी, घोड़ा, सिंह रखना चाहिए, तो बच्चे तो कुछ ऊंचा दिमाग वाला बनेंगे। कुत्ता बिल्ली घर में लाकर रख दे तो वो क्या बनेंगे, चेतना वैसे बनेगी ना। तो एक एक घर में एक लड़के के लिए 20-20 खिलौना इस तरह के, और क्या क्या सामान नाना प्रकार के रखते हैं। तो जगत देह के लिए, और देह स्वयं ही क्षणभंगुर है, कितना दिन इसको पोसेंगे। तो जब देह जाने वाला है तो क्रिमु व्यवहिता पत्य दारा गार्धना दय, फिर इस देह से संबंधित स्त्री, घर, धन, राज्य, कोष, गज, मंत्री, नौकर, ये जो ममतास्पद हैं, ये छूट जाएंगे। इसमें क्या आश्चर्य, जब देह ही छूट जाएगा तो देह के संबंध ही छूट जाएंगे, इसमें क्या कहना है। किमेत रात मनस्तु छे सहदेह न नश्वर है, अनर्थ अर्थ शंका से नित्यानंद रसोदत। आत्मा स्वयं नित्यानंद रस की उदधि है, आनंद वास्तव में आत्मा में, आत्मा खुद ही आनंदमय है, क्योंकि आनंदमय भगवान का अंश है। जैसे अग्नि का अंश अग्नि होगा, वैसे आनंदमय प्रभु का अंश होने से आत्मा स्वयं आनंदमय है। इसको बाहरी वस्तुएं क्या आनंद दे सकती है, धन आदि क्या सुख दे सकते हैं, वो तो देह के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, देह छूटा और वो भी छूट जाते हैं। ये केवल अर्थ के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अर्थ है नहीं, अनर्थ है। अच्छा, ये मान भी लिया जाए कि संसार के भोगों में सुख है थोड़े देर के लिए, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भोगने का अवसर कहां मिल रहा है जीव को, कब वो भोगता है रियली, किसी से पूछा जाए कब वो सुख भोगता है, कभी उसको अवसर नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, चांस नहीं है। निरूप्यताम यह स्वार्थक क्रिया देह भृतो सुरा, हे असुरो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, बताओ देहधारियों को कब भोगने का अवसर मिलता है? निषेकादि अवस्था से कृष्ण मानस्य कर्म भी 9-10 महीने तो जीव गर्भ में रहता है, तो उस समय सुख भोगने का उसको है अवसर? निषेकादि अवस्था से जितनी जीव की अवस्थाएं हैं देह में, सबसे पहली अवस्था है निषेक। निषेक का अर्थ होता है गर्भाधान। जिस दिन पिता गर्भाधान करता है तो उस दिन से उसका देह बनना चालू होता है। तो कब सुख मिलने भोगने का अवसर है? गर्भ में तो कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय रोता है, उसको बहुत कष्ट होता है। एक तृतीय स्कंध में जीव के दुख का वर्णन है, बचपन में किस तरह से दुख भोगता है। कभी कभी भूख के कारण रोता है तो माँ समझती है कि पेट में दर्द है, तो भोजन न करा करके कोई दवाई खिला देती है, क्योंकि वो तो कहेगा नहीं बच्चा, उसके मन में क्या दुख है माँ समझ नहीं पाती है। ऐसा व्यक्ति उसको पोस रहा है जो उसके भावनाओं को समझ नहीं पाता है। और कभी कभी पेट के दर्द से रोता है तो ऊपर से और ज्यादा खिला देती है तो और दर्द बढ़ जाता है। भगवान कपिल देव ने कहा है कि जो उसकी इच्छा को नहीं समझ रहा है वो उसका पालन कर रहा है, तो दुख होता है। तो गर्भ में सुख नहीं है, शिशु अवस्था में सुख नहीं है, और जब खेलने योग्य होता है तो माता पिता उसे खेलने नहीं देते हैं तो उस समय भी उसे सुख नहीं मिलता है। पढ़ाई आदि एक तपस्या ही है, उसमें भी सुख भोगने का अवसर नहीं। और जब जवान होता है तो इतनी इतनी कामनाएं और आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं कि बेचारा कमाने में व्यग्र रहता है, भोगने का अवसर नहीं मिलता है। और उसके बाद बूढ़ा हो गया तो भोग के जोग रहा ही नहीं, तो भोग कब भोगेगा? एक तो ये सुख नहीं है और दूसरे उसको अवसर कहा है। अवसर कहने का मतलब यह है कि जब जीव पूर्ण सुख का अनुभव करे, उसे कोई चिंता न हो, न कमाने की, न किसी के अपमान की, न किसी बात की, न भविष्य की कोई का कोई भय हो कि हमारा धन चला जाएगा, तब तो निश्चिंत भोग सकता है। तो क्या भोगेगा? जैसे बलिदान का बकरा है, बकरा को आप घास डालिए तो खाता रहता है, लेकिन कदाचित उस बकरे को ज्ञान हो जाए कि 10 मिनट के बाद हमारे गर्दन पर तलवार चलने वाली है, तो फिर उसको घास अच्छी लगेगी? वो चिंता में रहेगा, वो भोग आएगा सामने, घास फिर भी नहीं खा सकता है, वो कांपेगा। तो मनुष्य को तो इतना ज्ञान है कि मरना है, और नाना प्रकार की चिंताएं घेरे हुए हैं, तो ठीक से खा नहीं सकता। घर में सब कुछ होते हुए भी निश्चिंत नहीं रह सकते, भोगने का अवसर कहाँ है? तो इस पर एक प्रश्न होता है कि कर्म फल यदि समाप्त होगा, कर्म बंधन समाप्त हो, नहीं कर्म भोगते भोगते शेष हो जाएगा, तब तो भोग का अवसर मिल जाएगा उसे। वे कहते हैं कि कर्म फल समाप्त कैसे होगा, वो तो रोज कर्म करता ही जा रहा है। कर्माणि आरभते देही देहे न आत्मानुवर्तिना, आत्मा के साथ चलने वाले देह से वो कर्म करता है, और कर्म से फिर देह मिलता है, और देह से फिर कर्म करता है, कर्म से फिर देह मिलता है। कर्म समाप्त कहाँ हो रहा है? ऐसा नहीं है कि अब ये देह मिला है कर्म फल खत्म हो गया तो चलो भोगेंगे। अब कर्म फल के अनुसार देह मिला है, देह जो ही खत्म होगा फिर दूसरा देह चालू, और वो भी देह चालू कैसे होगा? ये नहीं कि 16 साल की आयु का देह मिल जाए, अब गर्भ में फिर देह बनना चालू हो गया, और यह शरीर मरा तो फिर दूसरा देह। तो कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, शरीर से कर्म, इस तरह तो लगा हुआ है। कभी कर्म बंधन समाप्त नहीं हो रहा है, कब ये भोगेगा, क्या भोगेगा, भोगने का सवाल ही नहीं। तस्मात, इसलिए कंक्लूजन करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, देयरफॉर, इसलिए काम और धर्म और अर्थ जिनके अधीन है, जिन भगवान की कृपा के अधीन है, भजत अनिहमात्मानम अनिहम हरिमीश्वरम, ऐसे समस्त कर्म बंधनों से पार करने वाले, दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान हरि का भजन करो। अगर वे भोग देंगे, वे धर्म देंगे, अर्थ देंगे, तो वो तो भोग सकोगे, नहीं तो तुम अपने कर्म से कमा करके भोगना चाहोगे तो उसको भोग नहीं सकते, दुखी रहोगे। तो भगवान का भजन करो। तो पुनः उस विषय को क्लियर कर रहे हैं कि भगवान के विषय में चिंता मत करो कि भगवान कहाँ है। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः मुहूर्तैर् महद्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंगीतः। भगवान सभी जीवों के आत्मा हैं, ईश्वर हैं, प्रिय हैं, और उन्होंने जो पंचभूतों के द्वारा शरीर बनाया है, अपने द्वारा बनाए हुए शरीरों में वही चेतना के रूप में रहते हैं, परमात्मा के रूप में भी रहते हैं। परमात्मा को जीव भी कभी कभी कहा जाता है। इस शरीर में जो जीवन शक्ति दे उसको जीव कहते हैं, जीव संगीत। तो भगवान सभी देहों में हैं, सभी देहधारियों के भीतर हैं, अतः उनका भजन करो। तो फिर असुरों ने कहा कि अरे हम तो बहुत छोटे कुल में जन्म लिए हैं और हमारे संबंधी सब डीमन हैं, ये सब हम कैसे कर पाएंगे भजन। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कोई भी कर सकता है। देवो सुरो मनुष्यो वा जक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान यथा वयम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम कौन ब्राह्मण कुल के हैं, हम भी तो असुर कुल के ही हैं। यथा वयम जैसे हम, हमारा देख रहा है ना कितना कल्याण हुआ, हमारे पिताजी मुझे मारने का कितना प्रयास किया, लेकिन कौन बचा रहा है? मैं जिसका भजन कर रहा हूँ वो प्रभु बचा रहे हैं। अपना उदाहरण प्रहलाद महाराज बच्चों को दे रहे हैं, जानते हो कि हमको कितना मारने का प्रयास किया गया लेकिन मेरा अहित नहीं हुआ। और दूसरे जगह कहाँ एग्जाम्पल जो है, हम खुद मैं ही एग्जाम्पल हूँ। तो इतना क्लियर उदाहरण देकर के जो व्यक्ति समझा रहा है तो बच्चे क्यों नहीं समझ जाएंगे, इसीलिए सब भक्त हो गए। देखो देवता हो तब भी भगवान के साथ उसका संबंध है, असुर कुल में आएगा तब भी भगवान के साथ संबंध है, मनुष्य जक्ष गंधर्व कोई भी हो यदि मुकुंद का भजन करेगा, मुकुंद के चरण कमल से प्रेम करेगा तो स्वस्ति मान स्यात्, वह स्वस्ति से युक्त होगा, उसका कल्याण होगा। जथा वयम जैसे मैं, जैसे हम। और हम में क्या क्वालिफिकेशन है, जन्म असुर वंश में हुआ है और असुरों में भी हमारे पिताजी कितने अच्छे हैं सब लोग जानते ही हो लेकिन फिर भी मैं भक्त हूँ। तो मैं स्वयं ही प्रमाण हूँ कि दैत्य भी भजन कर सकते हैं। इस तरह से एक प्रीचिंग का स्टाइल है, जो व्यक्ति जिस वर्ग का है उस वर्ग में जाकर के प्रीचिंग करना चाहिए। तो कृष्ण तुम्हारे हैं, जैसे मैं भगवान की भक्ति करके सुखी हूं ऐसे तुम भी सुखी हो जाओ। रियली यह सत्य बात है कि भगवान कृष्ण को जिन लोगों ने स्वीकार किया है वे और लोगों से सुखी है, इसमें संदेह नहीं। भौतिक सुख नहीं कह रहा हूं, रियली जो वास्तविक सुख है वह कहा जा रहा है। भौतिक वस्तुओं से तो सुख नहीं है लेकिन भगवान से जिनका संबंध हो जाता है तो वे सुखी देखे जाते हैं और लोगों से। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं स्वस्तिमान हूं, और इसी तरह से तुम्हारा भी हित होगा यदि कृष्ण का भजन करोगे। जीव का यह धर्म है कृष्ण की भक्ति, देह का धर्म नहीं। इसलिए देह चाहे राक्षस का हो, देवता का हो, या कीट पतंग कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति भगवान की का भजन करके कल्याण प्राप्त कर सकता है। कहीं भी कोई प्रवचन कर रहा हो और कोई सिद्धांत बता रहा हो तो उसे दृष्टांत देना जरूरी होगा। भाई भगवान की भक्ति करके कौन सुख प्राप्त किया है, किसका कुशल हुआ है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरा। ऐसे बहुत लोग हैं लेकिन वर्तमान में अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं, और छोटे कुल में जन्म लेकर के भी सब तरह से मुझे सताया भी गया लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। सुना ही होगा राजा का लड़का मारा जा रहा था तो पूरी दुनिया जानती होगी, वो लड़के क्यों नहीं जानते होंगे सुने ही होंगे कि इसको मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहते स्वस्ति मान, मैं स्वस्ति से युक्त हूं। फिर कहते देखो भगवान का भजन करने के लिए द्विजत्व जरूरी नहीं है। जो द्विज होगा, दूसरी दीक्षा होगी या ब्राह्मण है वही भजन कर सकता है, ऐसी बात नहीं। नालम द्विजत्व, भगवान को समझने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए द्विजत्वम अलम न, द्विज हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आदमी द्विज हो, दो बार जन्म ले, मतलब ब्राह्मण, या द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों को द्विज कहते हैं क्योंकि तीनों का द्वितीय संस्कार होता है, तीनों को द्विज कहा गया है। और देवत्व अथवा भगवान को समझने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए देवता में जन्म लेना कोई जरूरी नहीं। ऋषित्व अथवा ऋषि हो जाना, बहुत वेद शास्त्र पढ़ लेना, घर द्वार छोड़ देना, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है भक्ति के लिए। हे असुरात्मजा, हे असुर पुत्र, प्रिय नाय मुकुंद से न वृतन न बहुगेत, और न तो बहुत शुभ आचरण चाहिए, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करने वाला ही भक्त होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और न तो बहुज्ञता, बहुत बहुत शास्त्र पढ़े और जानकारी कला विद्या हो वही भक्ति कर सकता है ऐसा नहीं, कोई भी कर सकता है। न दानम न तपो निध्या, न शौचम न व्रतानिचा, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत बहुत दान किया है वही भगवान की भक्ति करेगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है। और न तप, और ऐसा नहीं है जो बहुत कष्ट सहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है वही भजन कर सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। न इज्ज्या, जो बहुत बहुत यज्ञ किया है, इज्ज्या पूजन किया है वही भगवान की भक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। न शौचन, शौचन का अर्थ शुद्धि, जो निष्काम हो चुका है या बहुत बहुत तीर्थों में स्नान किया है वही भक्ति करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। न व्रतानिचा, और न तो बहुत बहुत व्रत, भगवान तो केवल अमला भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बना, भगवान शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अमला भक्ति का अर्थ है निष्काम भक्ति, काम जो है वही मल है, वही गंदगी है, तो अमला भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, केवल भक्ति चाहिए। और अन्य विडम्बना, भक्ति के बिना जो अन्य गुण है मनुष्यों में वह तो केवल आडंबर है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवा आत्मोपमेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनिश्वरे, इसलिए हे दैत्यों हरौ भगवती भक्तिम कुरुत, भगवान हरि में कृष्ण में भक्ति करो, और सभी जीवों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझो, भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के प्रति भक्ति करो, सभी जीवों में भगवान को देखो। अब कह रहे हैं कि केवल मैं ही नहीं, बहुत से इतिहास में ऐसे लोग हो गए हैं जो भगवान कृष्ण को पाए हैं। दैते या जक्ष रक्षांसे स्त्रिय शूद्र ब्रजौकश खगा मृग पाप जीवा संति युतताम गतहा, बहुत से दैत्य, केवल मैं ही नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं बहुत से दैत्य भगवान को पा गए हैं, जक्ष राक्षस स्त्री, सब बहुवचन में है, जक्ष और राक्षस स्त्रियां शूद्रगण और ब्रज में रहने वाले लोग, ब्रज मतलब जंगल में गाय भैंस चराने वाले, यहाँ तक कि खग मृग पक्षी तक पशु तक भगवान को पाए हैं। पाप करने वाले जीव भी मनुष्य भी भगवान का आश्रय लिए हैं, और अच्युतताम गता है, वे उस पद को प्राप्त किए हैं जहां से कोई च्युत नहीं होता है, मतलब भगवान का धाम प्राप्त किए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सर्वजन। प्रभुपाद जहां लिखते हैं एज कृष्ण नेवर फॉल्स व्हेन वी रिवाइव आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस वी नेवर फॉल अगेन टू मटेरियल एग्जिस्टेंस, इसको अच्युत कहा गया, अच्युतता। बहुत से जीव भगवान की भक्ति करके और उनका धाम प्राप्त किए, स्थिर पद प्राप्त किए, पार्षद बने, तो तुम लोग भी भक्ति करो, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये जीव का स्वाभाविक धर्म है। और इस जगत में किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान गोविंद में एकांतिक भक्ति हो और सब जगह सभी जीवों में उनको देखना देखा जाए। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे जत सर्वत्र तदिक्षणम्। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। एतावानेव, इस जगत में बस यही जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, परम लाभ। जितनी वस्तु पाएगा जीव तो सब तो किसी काम के नहीं है, सबसे बड़ा लाभ यही है। ऐसा स्मृता, स्मृता का अर्थ है बड़े बड़े आचार्यों ने, ज्ञानियों ने इसको अस्थिर किया है, इस सिद्धांत को। वो क्या लाभ है जीव के लिए? एकांत भक्ति गोविंदे, गोविंद में, श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति, और जत सर्वत्र प्रदीक्षण, और सब जगह भगवान को देखना। जहां दृष्टि पड़े वहां कृष्ण को देखना, यही सबसे बड़ा लाभ है। भगवान में अनन्य भक्ति होने से ही भगवान सब जगह दिखाई पड़ते हैं। भक्ति नहीं रहने पर तो भिन्न भिन्न चीजें दिखाई देंगी, देखो वो है, ये है, ये है, ऐसा है, वैसा है। जिसके भक्ति होती है तो आंखों में भक्ति छाई रहती है, तो सब जगह कृष्ण को देखता है। जो प्रभुपाद जी एक नीति का श्लोक कोट करते हैं, नारायण मयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिनः, जगत धनमयम लुब्धा कामुकः कामिनी मयम। तो जो नारायण परायण भक्त हैं, परमार्थी हैं, वे इस जगत को नारायण मय देखते हैं। सी ए राम मय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जो, नारायण मय इस विश्व को देखते हैं। और जो लोभी हैं वे धन मय देखते हैं, चारों तरफ तो यहाँ धन है, यहाँ धन है, मिल जाए मिल जाए। लुब्ध है, जो लुब्ध है वे जगत को धन मय देखते हैं, और कामुका कामिनी मयम, और जो कामी हैं वे इस जगत को स्त्री मय देखते हैं। जिसके भीतर जो बात बसी होती है वही बाहर देखता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे सब जगह भगवान को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं। और सब जगह यदि कृष्ण दिखाई देने लगे तो यही जीव का सबसे बड़ा लाभ है। कहीं भी उसका चिंतन जा रहा है तो वहां भगवान दिखाई दे, दृष्टि जा रही है तो भगवान दिखाई दे, सुन रहा है तो भगवान सुनाई दे। इस प्रकार से बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। ये अंतिम उपदेश है उनका, और अगले अध्याय में वर्णन है कि अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम जगृहुर निर्वध्यत्वाद नैव गुरुवरु शिक्षितम। जितने दैत्य सुता थे, सर्वे दैत्य सुता है, प्रहलाद महाराज के इस उपदेश को, वर्णन को सुनकर उसको ग्रहण कर लिए, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। लेकिन गुरु जी जो पढ़ा रहे थे उसको नैव नहीं ही सीखा, स्कूल में कुछ और नहीं सीखे, अब केवल यही पढ़ रहे थे, इसको ग्रहण कर लिया। और सर्वे दैत्य सुता, सब एक भी बाकी नहीं रहे। अभी संवाद को जब हिरण्यकश्यपु सुनेगा तब तो उसका क्रोध हजारों गुना बढ़ जाएगा। एक तो मैं उसी के लिए चिंतित था और स्कूल में जाकर सबको ऐसा बना दिया, ये तो विष्णु का दल बढ़ने लगा ना। ये प्रहलाद महाराज की पेची है। तो बड़ा ही सुंदर उपदेश है, मैं बहुत संक्षेप में इसको पूरा किया हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के कई लेक्चर हैं इन दो अध्यायों पर, बहुत लेक्चर मैं देखा हूँ, कैसे कुछ सुना भी हूँ। देखने का मतलब ऑडियो कैसेट देखा, वैसे लिखा हुआ और कुछ सुना। बहुत प्रिय प्रसंग था प्रभुपाद जी का, बहुत प्रवचन करते थे। तो आप लोगों के बीच श्रील प्रभुपाद जी कृपा से और आप वैष्णवों की कृपा से मैं प्रहलाद महाराज के इन विचारों को कहा, लेकिन प्रहलाद महाराज जितना इसको समझते हैं हम लोग कहाँ समझ सकते हैं। एक तो संस्कृत भाषा में है और दूसरे किसी की बात को समझने के लिए उतना स्तर चाहिए, और समय भी कम था इसलिए व्याख्या बहुत नहीं हो पाई। लेकिन जो कुछ भी हुई वो सब प्रभुपाद जी की कृपा से हुई। मैं यह आसन छोड़ने से पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके सत प्रयास से ऐसा एक शुभ अवसर हुआ जिसमें शास्त्र के श्रीमद् भागवत की चर्चा की गई। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है जब भक्तों का समागम हो, भक्तों के बीच में ही भागवत की कथा हो पाती है ठीक से, क्योंकि समरस एक पथ के पथिक होते हैं, एक रस वाले होते हैं, तो वे इसका आदर करते हैं। वास्तव में वैष्णव जन ही श्रीमद् भागवत का आदर करते हैं। जब वैष्णवानम धनम, यह श्रीमद् भागवत वैष्णवों का वास्तविक धन है, लेकिन इस धन का उपयोग है सुनने और बोलने में। तो यहाँ श्रवण कीर्तन किया गया, तो आप लोगों की भक्ति से वास्तव में इस निर्जर्सी में बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है, सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो भगवान करें श्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी और गौर निताई कि आपका कांग्रेगेशन बढ़े और भक्ति की क्वालिटी भी बढ़ती जाए, आप लोग और उनका उद्धार कर सकें, यही कामना है भगवान से। और बीच में कथा के समय वक्ता का आवेश होता है, तो उस आवेश में अवश्य कुछ न कुछ अनुचित बातें निकलती हैं। बाद में अपना ही कैसेट सुनने पर बात समझ में आती है कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि कथा के आवेश में नहीं कहने जो बातें निकल जाती। और प्रहलाद महाराज की शिक्षा को स्वयं ग्रहण करके इसका प्रचार करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग कृष्ण की शरण में आ सके। हरे कृष्ण।
उचित प्रयास और सुर बाल का हर एक श्लोक में प्रहलाद महाराज जी नृसिंह भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस श्लोक का भी आ रहा है।
हाँ, तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कोटि प्रयासो असुर बालका हरे क्वनत प्रत्येखिल गुरु भगवान प्रयास। धार हो जाए तो आपको परिश्रम नहीं होगा, क्या परिश्रम है, इनको इनका उद्धार कर दीजिए, उनका उद्धार कर दीजिए। बताते हैं मूढ़े सुवई महदुन ग्रह अर्थ बंध। भगवान ने कहा कि प्रहलाद मैं तुम्हारा उद्धार कर देता हूँ, दूसरे की चिंता मत करो। तो प्रहलाद ने कहा कि महान व्यक्ति जो होते हैं उनकी कृपा की शोभा मूढ़ों पर होते हैं, जो मूढ़ है अज्ञानी है उन पर कृपा कीजिए। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं इस तरह का हठ मत करो, मैं तुमको तार देता हूं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं किम तेन 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 सेवतान, आप हमारा उद्धार करके क्या, हमारा तो उद्धार हो चुका है, जो आपके भक्तों की सेवा में है और आपका कीर्तन कर रहा है उसको कोई चिंता नहीं है उद्धार होने की। हम कभी नहीं कहते हमारा उद्धार कीजिए, हमको कोई भय नहीं है, मैं तो आपकी आपका लीला गान कर रहा हूँ, आपका कीर्तन करता हूँ, हमको चिंता नहीं है। आप कहते हैं तुम्हारा उद्धार कर देता हूँ, तुम्हारा उद्धार कर, तो हमारा मत कीजिए, हमारा हो चुका है। इतना तो कहते हैं किम तेन तेन जन ते जनान सेवता, मैं तो नारद जी की सेवा कर रहा हूँ, नारद जी का भक्त हूँ, उनकी कृपा से मैं पार हो जाऊंगा, आप इन जीवों का उद्धार कीजिए, हमारे उद्धार की चिंता छोड़िए। और यहाँ तक कहते हैं कि मैं आपकी लीला कथा को गाने में इतना तल्लीन हूँ कि मेरे लिए संसार सागर है ही नहीं, पार करना तो दूर की बात, आप इन पर कृपा कीजिए। फिर भी भगवान कहते हैं कि तुम हमसे हट मत करो, जाकर ज्ञानियों से कहो कि वे लोग प्रीचिंग करें, वे लोग उद्धार करें। तो वे कहते हैं कि ज्ञानियों की तो ये हालत है कि सब एकांत में भजन कर रहे हैं, कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है, ऐसा कहते हैं एक श्लोक में कि बिजने न परार्थ निष्ठा प्रायेण देव मुनयो स्व विमुक्ति कामा तिष्ठन्ति बिजने न परार्थ निष्ठा। मुनियों की बात आप कर रहे हैं, जाकर देखिए मुनि लोग क्या कर, सब एकांत में बैठ बैठ कर अपनी मुक्ति के फेर में पड़े हैं, कोई प्रचार नहीं कर रहा है, तो मुनियों पर क्या भरोसा किया जाएगा, वो लोग अपने उद्धार के फेर में पड़े हैं, अपने उद्धार की चिंता है। जहां था चरंती मौनम, अब अधिकांश मुनि तो मौनी है, कोई बोल ही नहीं रहा, तो उद्धार क्या होगा। ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो मुनियों से ऐसा नहीं की जा सकती कि वो प्रचार करेंगे, कोई प्रचार करने वाला नहीं। आप अपनी कृपा से समस्त जीवों का हित कीजिए, उनको बैकुंठ भेजिए। एक बालक जैसे हट कर जाता है, ऐसे प्रहलाद महाराज जिद में आ गए तो उद्धार कीजिए। तो बच्चे के हट को जैसे माता पिता रखते हैं, उसी तरह भगवान ने कहा अच्छा भाई, एक ब्रह्मांड के जीवों को बैकुंठ भेजेंगे। ये प्रहलाद महाराज का उद्योग था। तो मैं वो श्लोक तो कल ही कुछ कह चुका था, इसलिए उसको बहुत नहीं कहा। तो असुर बालकों से भगवान का गुण वर्णन कर रहे हैं और भगवान से जीवों की दशा का वर्णन कर रहे हैं, इस तरह दोनों की संधि करा रहे हैं भगवान, प्रहलाद जी दोनों को मिला रहे हैं। तो ऐसा प्रवचन करना चाहिए, ऐसी बात कहनी चाहिए कि जीव अधिक से अधिक कृष्ण से जुड़े और कृष्ण भी जरा ध्यान दें जीवों पर वो भी केवल रासलीला में ही न लगे रहे ठीक है, और कोई एक आध प्रश्न।
तभी भी प्रहलाद जी कह रहे थे कि ऐसे सावर स्वामी वो जगत स्वामी नहीं है जो भक्ति की विनिमय से कुछ पर।
हाँ वैसा कह रहे हैं प्रहलाद महाराज जी, कहते हैं वह सेवक सेवक नहीं है जो स्वामी से कुछ पाने के लिए सेवा करे, और वह स्वामी स्वामी नहीं है जो सेवक से कुछ सेवा करा करके तब दे या सेवा की अपेक्षा रखे। तो आप ऐसे स्वामी नहीं, आप पूर्ण हैं, और मैं भी ऐसा सेवक नहीं हूं कि कुछ करके आपसे मांगू। आप अगर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कामनाओं का अंकुर उगे ही नहीं, कोई इच्छा उगे नहीं संसार में, यही वर मांगा है उन्होंने। और फिर भगवान तो चुप हो गए। तो जाने जाने को हुए तब प्रहलाद ने कहा कि अवश्य आप महादानी हैं, मैं आपसे एक वर मांग रहा हूं। वर यह दीजिए कि हमारे पिताजी आपसे बहुत द्रोह किए और मैं आपका भक्त था इसलिए मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन मेरे पिताजी मुझे जो दुख दिए उसका मुझे कोई दुख नहीं है। आपके विषय में जब वो बहुत बुरा बोलते थे तो इसका मुझे बहुत कष्ट है और इससे उनकी अधोगति होगी, इसलिए आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए और उनको मुक्त कीजिए। तो भगवान ने कहा कि अरे बेटा तुम्हारे तो 21 पीढ़ी के लोग तर गए हैं, वो तो दूसरी पीढ़ी में है, तुम क्यों चिंता करते हो। ये सब कथाएं रह गई अब, क्योंकि बहुत लंबी स्तुति है प्रहलाद महाराज की, भगवत में सबसे बड़ी स्तुति वही है। एक एक स्तुति एक एक श्लोकों पर प्रभुपाद जी का कई कई प्रवचन है कई बार। एक बार प्रभुपाद जी लगता था कि इस स्तुति के सभी श्लोकों पर प्रवचन कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ छूट गया है उसमें कहीं ना, क्योंकि एक जगह पर कुछ किए तब तक दूसरे जगह चले जाना था, तो वहां किए तब तक इधर उधर। बहुत सुंदर स्तुति है, बड़ा सुंदर सिद्धांत। हाँ नवम अध्याय में इसी 7-9
देवकी और आत्मियों के दूसरे के साथ बात करे गंभीर कर रहे
हैं। हाँ लाए ना सब आए आए वहां माता देवकी ने उनको दूध भी पिलाया, इसके बाद सब चले गए। भगवान के बड़े भाई थे सब। कुरुक्षेत्र में और कोई गारंटी तो भगवान दी है गीता में।
तो
ये शुरू से ही फंसा हुआ है, जैसे कोई बच्चा शुरू से ही रोगी जन्म ले वैसी तरह से शुरू से ही ऐसा है। अनादि शब्द कहता है सर, शुरू से ही है।
उन्होंने इतना सुंदर बनाया इसलिए हम लोग
बच गए,
नहीं बनाया होता तो
नहीं, नहीं ये सुंदर कुछ नहीं है।
भोगने के लिए हम
कोई सुंदर नहीं है, भ्रम है जीव को वास्तव में।
खाने की चीजें देखो महाराज कितनी सुंदर, एक खाओ एक खाओ बना ली। आप कपड़े के बताए, कोई भी फिरने की जगह बताए, कितनी अच्छी अच्छी चीजें फिरने के लिए भी अच्छी, क्या सुंदर नहीं बनाया ये देख ख्याल कर।
क्या सुंदर अपने शरीर में ही नरक बसा हुआ है शरीर का, नहीं जरा एक्सरे की दृष्टि से शरीर को देखा जाए तो सुंदर क्या है, यदि चमड़ा हटा दिया जाए क्या सुंदर है, इसका मतलब चाम सुंदर है तो स्किन ही सुंदर रहा ना, तो स्किन को अलग करके और कहा जाए तब ठीक है इसी को देखो, कोई देखेगा सुंदरता क्या है, मोह बस भ्रम बस लग रहा है वास्तव में।
डीप में जाएगा
तो ये कौन डीप है, ये तो बिल्कुल हल्की बात है। एक कवि ने एक भक्त में लिखा है कि जिस व्यक्ति को रोज लैट्रिन जाने में अपना अंग धोने में खाने में पहनने में ही जी नहीं उब रहा है उसको अब वेद क्या करेगा। अपने आप बैराग हो जाना चाहिए, अपना ही अंग धोना पड़ता है कितना तो सिकंदा और शरीर ये सब, क्या उपदेश की जरूरत है, क्या नहीं समझ में आ जाना चाहिए कि शरीर दुखद है बिल्कुल दूषित है, स्वयं ही समझ में आना चाहिए। वास्तव में मनुष्य के पास इतनी शक्ति है लेकिन भोगों में अभिनिवेश है इसलिए नहीं समझ पाता है। संसार सुंदर अंदर कुछ नहीं है, दुखालयम भगवान इस विश्व को बनाकर जैसे इस पर लिख दिए हैं दुखालयम, दुख का भवत है, किसिम किसिम के दुख हैं, उतने प्रकार के भोग नहीं है जितने प्रकार के दुख हैं, ये निश्चित। शरीर को आप पहनाइए खिलाइए क्या सुख का अनुभव करेगा, कोई सुख का अनुभव नहीं करेगा, लेकिन इसमें दुख की वैरायटी होती है। डॉक्टर लोग जानते होंगे एक एक अंग में कितना कितना रोग और दुख होता रहता है, एक एक अंग के स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट हैं तो दांत के ही बारे में क्या क्या रोग है उनसे पूछिए, मुझे डेंटिस्ट में भी कई हाँ आप तो जानते ही है, तो फिर आई स्पेशलिस्ट, आंख के नाक के कान के हड्डी के आंत के क्या क्या, मतलब इसमें लगता है केवल रोग ही रोग बस, और ऐसे रोगी शरीर से हम सोचते हैं कि हम भोगेंगे संसार को।
मामी जी ये तो बेसिकली सारी जो बातें हो रही है डिजायर से तो हो रही है, उससे ना बात जो कंटेनमेंट जब हो जाए
हाँ संतोष, संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही सबसे बड़ा धन है वास्तव। भौतिक जगत में जितना भगवान ने दिया उतना संतोष कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, केवल संतोष नहीं, संतोष तो वैसे पशु पक्षी भी संतुष्ट होकर डाली पर शाखा पर बैठे हुए हैं, वो संतोष नहीं, संतुष्ट रह करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, भगवान की भक्ति करनी चाहिए संतुष्ट रहकर, तो तब व्यक्ति भजन कर सकता है। हाँ भगवान की कृपा से ही वास्तव में अंत होता है, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के साधन में लगना चाहिए। कामना का अंत वे करेंगे क्योंकि भीतर वे बैठे हुए हैं, जहाँ से कामनाएं उत्पन्न होती हैं वहीं वो बैठे हुए हैं, और उनके सैंक्शन के बिना कामना उत्पन्न नहीं हो सकती है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। लेकिन वो प्रसन्न हो जाए हमारे कर्तव्य से तब कामनाओं को उठने नहीं देंगे। प्रसन्न कैसे होंगे? हरे कृष्ण से प्रसन्न होंगे, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, श्रवण कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। तो हमारे श्रेणवताम स्व कथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ, वो तो हृदय अंतस्थ हृदय में ही है। ये अभद्राणी विधुनों की सुविधा, तो हमारे सारे अभद्र को दूर कर देंगे। अभद्र क्या है? यही अनवांटेड डिजायर्स, ये सब फालतू जो कामनाएं हैं, यही अभद्र है। तो वही दूर करेंगे, जो भीतर है वही साफ करेगा, लेकिन वो कथा सुनने से साफ करेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे वे। भगवान ऐसे करोड़ों जन्म बीत जाए लेकिन जीव को शुद्ध नहीं करेंगे, जब उनके बारे में सुनेगा तब शुद्ध करेंगे। अब भगवान अपने नियम में बंधे हुए हैं, क्या किया जाएगा। जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे तो हृदय की सफाई होगी, करेंगे भगवान, किन्तु उस रूप में करेंगे, परमात्मा के रूप में तो उदासीन है, वो कुछ नहीं करेंगे। परमात्मा के रूप में तो आपको बुखार लगा है लेकिन वो आनंद में है, आप आया कर रहे हैं वो आनंद में है, वो बिल्कुल उदासीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौकाई में परमात्मा से और उनके भगवान के नाम से तुलना कर रहे हैं, तो नाम को बहुत ज्यादा बताए। वे कहते हैं कि असप्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान बिल्कुल अपने अविनाशी स्वरूप में परमात्मा रूप में सबके हृदय में है लेकिन सारे जीव दुखी। परंतु भगवान का नाम हृदय में आने की तो बात छोड़ दीजिए, केवल जिह्वा से टच कर जाए तो सारा संसार दुख समाप्त हो जाता। और वो अविनाशी भगवान अनंत अनादि काल से हृदय में है और संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कट रहा है, और नाम जीव पर टच करते ही संसार वृक्ष उखड़ कर समाप्त हो जाता है। तो बताइए भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए।
महाराज जी, जब तक आप यहाँ हैं हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती रहती है, हम श्रेय उत्तर के अध्ययन भी करते हैं, तो आप चले जाते हैं उसके बाद ये ऐसा ऐसा धीरे धीरे।
वो स्वाभाविक है, लेकिन वैष्णव का ये भक्तों के संग में बैठना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए तो बना रहेगा। स्वयं भी इंडिविजुअली पढ़ना चाहिए कभी कभी शास्त्र को, और भक्तों के साथ मिलना, दर्शन करना, कीर्तन करना। और वैसे तो स्वाभाविक ही है कि कभी चेतना भगवान में बढ़ेगी लगेगी, कभी कुछ घटेगी भी, ये बड़े बड़े भक्तों की भी बात होती है, लेकिन फिर भी वे कोशिश करते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे हम लोग जी रहे हैं, स्वास्थ्य की कामना रहती है, कभी कभी शरीर बहुत फ्रेश दिखता है, लेकिन कभी कभी अकस्मात कुछ रोग हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है, लेकिन फिर दवा लेते हैं फिर फ्रेश होते हैं। इस तरह से करते रहना चाहिए। श्रवण कीर्तन जले कर ऐसे चल, श्रवण और कीर्तन के जल से भक्ति लता को सींचना चाहिए तो हरी भरी रहेगी। हाँ, विकृत छवि क्या है? विकृत नहीं, वैकुंठ की विकृत छवि नहीं है यह। विकृत छवि होगी भी तो दूसरी होगी, वैकुंठ है ही नहीं, वैकुंठ बिल्कुल भिन्न है इस। ये बताया जाता है उल्टा, उल्टा का मतलब है कि वैकुंठ दिव्य है तो यह माइक है, वैकुंठ आनंदमय है तो यह दुखमय है, ये भाव उसका है, वैकुंठ से टोटल भिन्न है, ये मतलब है। जैसे देह और आत्मा का भेद प्रहलाद महाराज ने बताया, वही भेद इस जगत में और वैकुंठ में है। ये बिल्कुल क्षण भंगुर है, दुखद है, और वैकुंठ नित्य है, आनंदमय है। बारंबार भगवान कहते हैं कि तुम इस जगत में क्यों फंसे हो, असंग के शस्त्र से इसको काट करके उस लोक में जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पदम ततः परिमार्गितव्यम जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, उस लोक में जाना चाहिए, उस सुखमय स्थान में। लेकिन ये जगत को काटना है, काटेंगे कैसे? जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष काटते हैं, तो वैसे इसको असंग शास्त्र से काटेंगे, वैराग से काटना है। जगत हम काट नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे फिर भी ये न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी रहेगा, क्या कोई काट पाएगा। लेकिन असंग वैराग्य से काटना चाहिए, वैराग रहेगा, ये रहे चाहे कुछ भी हो हमारे लिए कटा हुआ है ना। जिसको राग नहीं है भोगने का, तो रहते हुए भी तो कटा हुआ है कनेक्शन। तो असंग शस्त्र दृढ़ न छित्व, दृढ़ वैराग्य चाहिए, काट देगा ये संसार रहेगा लेकिन वो व्यक्ति पार हो जाएगा। तो समाप्त किया जाने का कोई प्रश्न हाँ, वो भी हो तो अच्छा है अनुमोदन का। जी वो भी थोड़े थोड़े काल तक वो तो ठीक
है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुझे बहुत खुशी है कि महाराज जी अपने मंदिर में आए, आप लोगों को बहुत ही सरल हिंदी भाषा में भगवत धर्म का मार्ग प्रदर्शन किया। उनकी कृपा से हम लोग भगवत धर्म क्या होता है, यह संसार क्या है, यह आत्मा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर कैसे जाना, ये सब उन्होंने हमें बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही सुंदर रूप से बतलाया, भक्ति को जागृत किया। और अब ये हम लोगों का कर्तव्य है कि जो उन्होंने जागृति दी, हमारा जो मार्ग भक्ति मार्ग में प्रशस्त किया, उसे हम आगे बढ़ाएं, उसके बारे में हम आगे ज्यादा से सोचें। तो महाराज इस कार्य में बहुत हद तक उन्होंने इसमें बहुत ही सहायता की है। वास्तव में उन लोगों ने एक भक्ति का बीज बो दिया है, और वो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम श्रवण कीर्तन भक्तों के एसोसिएशन के द्वारा उस बीज को आगे पनपाएं, उस लता को आगे बढ़ाएं, तो वो अवश्य बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं महाराज का बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ कि उन्होंने हम पर बहुत कृपा की, असीम कृपा की, और वैसी कृपाओं बनाए रखे। कृष्णे सुधर्मोपगते धर्म ज्ञानाविधि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोति दितः। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलियुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह अद्वितीय दीपक है। पूज्यपाद श्री राधा गोविंद महाराज जी महाराज ने इस महान अमल ग्रंथ का बहुत ही सरल लौकिक भाषा में हमें रसास्वादन कराया। आप परम विद्वान हैं, रसिक हैं, श्रीमद् भागवत भगवद गीता व सभी गौड़ीय शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। आपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है, का पद पद पर आस्वादन करवाया। सभी सौभाग्यशाली श्रोतागणों ने मंत्र मुग्ध होकर सच्ची लगन के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए आपका भागवत पारायण सुना। भक्ति के बारे में जो हमारी गलत धारणाएं व मान्यताएं थी, वे आपकी विद्वता से दूर हुई। हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहन मिला। आपने कई रोजमर्रा के सरल उदाहरणों के द्वारा भागवत कथाएं सुनने में बड़ी मधुर समझने योग्य बना दी। आपके श्लोकों का भाव भली भांति समझाने आपने श्लोकों का भाव बड़ी भली भांति समझाने के लिए श्लोकों में आए हुए प्रत्येक शब्द के भाव की पूर्ण रक्षा करते हुए छोटे छोटे वाक्यों में उदाहरण सहित उसकी सरल व्याख्या की है। मैं अपने व इस न्यू नवदीप धाम के समस्त भक्तगणों के प्रति भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ। वह हमारा यह बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे व धारावाहिक रूप में 11 दिनों तक लगभग 48 घंटों का आपने भागवत का रसास्वादन करवाकर हम सबको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, भक्ति का महत्व बतलाकर उसका मार्ग प्रशस्त किया। इन सबके लिए ये श्री श्री गौर निताई मंदिर की ओर से मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना है कि आप जैसे भक्तों का संघ हमें समय समय पर मिलता रहे, वो आगामी वर्ष भी आप 13 दिन की भागवत कथा आप इसी मंदिर में अवश्य करें। हम सभी उस दिन के लिए इंतजार करेंगे। श्री राधा गोविंद महाराज की जय, भक्त वृंद की जय। जो भी दूसरे सज्जन आकर के पढ़ना चाहें आप यहाँ आइए, और महाराज जी को जो भी आप भेंट देना चाहें वो भी साथ कर दे सकते हैं। हरे कृष्ण।
बहुत अच्छा लिखा है, बहुत जोरदार हिंदी। वो प्रिंट नहीं हो सकता हिंदी, वो प्रिंट नहीं हो सकता हिंदी में।
हिंदी में नहीं कर सकते हैं महाराज जी,
बोलिए।
आदरणीय राधा गोविंद महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। राधा गोविंद महाराज ने अपनी कथा में जो उनको स्नान कराया और बताया कि भक्ति बढ़ाने के लिए 63 उपाय है, जिनमें से उन्होंने बताया कि 5 बहुत महत्वपूर्ण है, अर्च विग्रह, भक्तगण, संकीर्तन, रजवास और भागवतम। ये 5 उन्होंने बताए थे कि भक्ति बढ़ाने के बहुत अगत्य संपूर्ण है। इस समय इस भागवत कथा में हमने इन 5 का बहुत अच्छी तरह से लाभ लिया है। हम 5 देख सकते हैं कि ये कथा नवदीप धाम में हो रही है, गौर निताई के अर्ध विग्रह के सामने। सौर्च विग्रह इधर है ही, महाराज की सत्संग के हमको डीओटी का सत्संग भी मिल गया है, तो संकेत सत्संग भी मिल चुका है। बीच बीच में हम की हरे कृष्ण की धुन भी सुनाई रहते थे, तो संकीर्तन भी हो गया। भागवत हम पढ़ ही रहे हैं, तो भागवत मिल ही गया। और रजवास हमको जरूर मिल चुका है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है, नारद जी ने बताया था विष्णु भगवान से कि न हम तिष्ठमि वैकुंठे, योगी नाम हृदय सुवा, तत्र तिष्ठन्ति नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। जहां मेरा भजन हो रहा है वहां मैं हाजिर हूं, तो ब्रजवास भी हमको मिल गया। इसलिए हमने 5 चीज जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की बताई थी वो हमको इधर ही मिल चुकी है। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए ये बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं श्री गोविंदाई टेम्पल की और तरफ से और आर्च विग्रह से महाराज को प्रार्थना करता हूँ कि हर साल हमें कथा सुनाते के लिए सुनाने के आ जाए। हम ये 3री दफा उनकी कथा सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर साल कई कई नए भक्त बढ़ रहे हैं, नए भक्त सुन भी रहे हैं। महाराज को हम ये भी कह सकते हैं कि वो तो एक चलते फिरते तीर्थ स्थान है। हम अभी तीर्थ स्थान में तो जा नहीं सकते, तीर्थ स्थान में जाने की हम सोचते हैं लेकिन जा नहीं पाते हर साल, और कभी कभी तो कई सालों में भी नहीं जा पा सकते। तीर्थ स्थान जाने का यही फल होता है कि हम साधु से संग करें और पवित्र नदी में कुछ स्नान करें। तो हमको इधर चलते फिरते तीर्थ स्थान कहने का मतलब यही है कि वो लोग इधर आते हैं, राधा गोविंद महाराज जैसे सत्संगी और महात्मा इधर आते हैं और हम इसकी वाणी में स्नान करते हैं, तो हमको सत्संग भी मिल जाता है और स्नान भी मिल जाता है। तो ये चलते फिरते तीर्थस्थान हर साल हमको इधर आके ऐसे स्नान करवाते रहे तो हमको भक्ति में बहुत बाढ़ आएगी, हमें भी भक्ति में बाढ़ आएगी। अभी अभी प्रश्न किया गया था कि जब महाराज है तभी हम स्नान कर सकते हैं, लेकिन बाद में स्नान कैसे करेंगे। तब उन्होंने ये भी बताया, उनकी सलाह थी कि हम हरे कृष्ण की चेंटिंग करते रहे तो वही एक स्नान होता रहता है। स्नान के हमको बहुत जरूर रहते हैं, क्योंकि हम 7 दिन के बाद और 11 दिन के बाद तो फिर संसार के कार्यों में लगे जाते हैं। तो इन कार्यों में लगे रहते भी हमको स्नान करना चाहिए, वो तो चले जाएंगे, लेकिन हम स्नान करते हैं उनकी सलाह से, सलाह सूचन से कि हम हरे कृष्ण का संकीर्तन करते रहे, तो वो स्नान हम जरूर करते रहेंगे। स्नान करते करते हम जरूर संसारिक कार्य भी करते रहेंगे। मैं इन सब चीजों के लिए उनका बहुत आभारी हूं, और मैं फिर भी उनको अपनी विनती करता हूं कि वो हर साल इधर आके हमको ऐसे स्नान करवाते रहें। अगले साल को मैंने कैलेंडर उनको दे दिया है, तो उनको पता लग जाए कि कौन सी तारीख इधर आएंगे, लेकिन जाने से पहले हमको जरूर बताएंगे कि वो कौन सी तारीख से इधर आएंगे और कहां तक कथा करेंगे, क्योंकि मैंने सारा कैलेंडर उनको दे दिया है, तो अभी वो जाने से पहले हमको ही बताएंगे। मैं फिर भी उनका बहुत आभारी हूं। हरे कृष्ण।
नारायण जी को प्रणाम। मुझे ज्यादा अवसर तो नहीं मिला भागवत सुनने का बार बार, और जब जब भी मौका मिला ये मेरा तीसरा मौका है भागवत सुनने का, और जिस सरल तरीके से आपने भागवत हम लोगों को समझाई है वो बहुत ही दर्शनीय है, और ये ज्यादा रुचिकर हो गई है, और जब जब हम जाते हैं तो उसकी भावना भागवत सुनने की ओर भी जितना गहराई में जाने की कोशिश करते हैं हर समय ऐसे रत्न ही मिलते हैं, तो आपकी बहुत बहुत कृपा है, और अगले वर्ष फिर आपके दर्शन होंगे।
गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा जी में तो हमें स्नान करने के लिए हरिद्वार जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, पर ये जो भागवत गंगा महाराज ने हमें सुनाई इसमें हमने खूब आनंद से गोते लगाए और उसका बहुत रसपान किया, उसके लिए हम महाराज के बहुत आभारी हैं। और मैं वाशिंगटन पोटोमक टेम्पल से की तरफ से महाराज को रिक्वेस्ट करता हूं कि वाशिंगटन निवासियों को भी वो इसका लाभ दें, जिससे हम लोग भी इस भागवत की गंगा में गोता लगा सकें। और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें यहां आने का अवसर दिया, और यहां रह के हमने भगवान का भजन किया, भगवान की कथा सुनी, और ये जो इन्वेलप इन्होंने दिए हैं, एक वैदिक परंपरा है कि जब भी हम गुरु से ज्ञान लेते हैं तो गुरु को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, और तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस वैदिक परंपरा का पूरा पालन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम।
परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव बंधुजनों और बहनों, जय श्री कृष्ण। पूज्यपाद ने बहुत बड़ी कृपा की जो हम सबको 11 दिनों तक श्रीमद् भगवत के रस महासागर में हम सभी को स्नान कराते रहे। कदाचित हमारे स्नान की अवधि पूर्ण होने आई है तथा हमें अन्य वैष्णव जिज्ञासुओं के लिए स्थान रिक्त करना है, किंतु सत्य यह है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। महाराज श्री की वाणी में इतनी मधुरता है कि जिज्ञासुओं की जिज्ञासा और भी तीव्र हो उठती है। महाराज श्री ने जिस सरलता से श्रीमद् भागवत के गूढ़ ज्ञान को प्रस्तुत किया मानो वह स्वयं महाराज पूज्य सुखदेव गोस्वामी की उस सभा में उपस्थित हों जहाँ की यह ज्ञान महाराज परीक्षित वेद व्यास जी तथा अन्य महर्षियों के लिए बिखेरा जा रहा था। महाराज श्री ने अपनी व्याख्या में रिमोट कंट्रोल की बात की थी। मुझे आत्मविश्वास है कि महाराज श्री के हृदय में अवश्य ही रिमोट कंट्रोल कैमरा है जिसके माध्यम से वे हमें अपनी आंखों देखा एवं कानों सुना सब हाल भगवान की व्याख्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते रहे। कलयुग में हम सभी प्राणी धन्य हैं जिन्हें महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आप सभी भक्तों की ओर से मेरी प्रार्थना महाराज श्री के चरणों में यह है कि हमें छोड़े नहीं। हम सभी ने अपनी जीवन डोर आपके हाथ में दे दी है, जिसके सहारे यदि हम श्री हरिधाम तक नहीं भी पहुंचते हैं तो कम से कम उस मार्ग पर तो आ जाएं जहां जो कि हरिधाम की ओर जा रहा है। इसी भावना के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि अगले वर्ष महाराज की श्री मात्र 11 दिवस के लिए नहीं अपितु 11 माह के लिए हमें दर्शन दें तथा अपने हृदय में स्थित रिमोट कंट्रोल कैमरा के माध्यम से पुनः हमें भक्ति सिंधु में स्नान कराते हुए श्री हरिधाम के उस मार्ग पर हमें अग्रसर करें हमें अनुग्रहित करें। यदि आप मेरे इस अनुमोदन से सहमत हैं तो कृपया अपनी अनुमति जय घोष से प्रदर्शित करें। परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज की, परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज की, परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमदे भक्ति चरु स्वामी जी नामिने। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रशास विस्तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डियर हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी प्लीज एसएम हमलो बिजनेसेस और गुरुशु प्रभुपाद। अभी मिस्टर दागा ने जो पहले बोला तो वो मिस्टर दागा थे और आई विल टेल यू लिटिल हिस्ट्री अबाउट हाउ दिस होल कथा स्टार्टेड। मिस्टर दागा एवरी ईयर he hears 24 hour kirtan at his house and thus he gives us association. So one time Dhanudhar Swami was there and Dhanudhar Swami just came up with an idea that we should have a katha in Hindi. So he accepted the idea and then somehow Krishna arranged, and when Dhanudhar Swami was thinking at that time when he was speaking he had somebody in his mind. And later on I found out that it was Radha Govind Swami. So next year, after year after that, this whole thing happened. So this is how Krishna works for his devotees, and this is how we are getting all Radha Govind Swami's association. In your lecture, Maharaj, I can hear Guru Parampara. You repeat what Prabhupada said and your instructions are very sublime. By giving simple examples, you explain things very nicely. You also give people a chance to invite you in their home, and then you purify them. We are very fortunate to have you. Your answer to the questions from audience are straightforward and precise, and according to sadhu and shastra. It was very nice of you to lead Mangal Aarti yesterday. I was very happy to see you. Very nice. And give your association. We are looking forward to have you year after year. Hare Krishna.
Dear His Holiness Radha Govinda Maharaj, Haribol, I was really impressed by your inspiring and comprehensive commentary of Srimad Bhagavat Katha. We, the earthly human beings, are suffering from misery due to lack of following spiritual principles. Material gains and facilities can never help this world to go back to Godhead. Your Holiness gave us transcendental knowledge to uplift the lives of our families, society and nation at large by devotion and surrendering to the Lord Krishna. I appreciate His Holiness and inspiration to motivate us towards bhakti for our spiritual advancement and to liberate our souls from the cycle of birth, old age and death. Thank you.
नमोम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूताले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने टू मोस्ट रेस्पेक्टेड राधा गोविंद महाराज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस टू योर फीट ऑल गोज टू श्रील प्रभुपाद योर 11 डेज प्रवचन ऑन श्रीमद् भागवतम हैज टेकन अस टू द ब्लिसफुल सिचुएशन दैट आई पर्सनली डिडंट फील दैट सो मेनी डेज हैव पास्ड. Your wonderful discourse of Srimad Bhagavatam made us to relish the sublime beauty of this Mahapurana because of your humorous description and personal realization. In this aspect, you know, I would like to quote, you know, Srimad Bhagavatam, 12th Canto, chapter 3 and 51, you know, text, where Parikshit Maharaj was told about the description of the whole Kali Yuga, that what, you know, things will be coming, and only way to relieve all those things was, you know, very short thing. And that was Kale Dosho Nidhe Rajan Astihi Ekumhan Guna Kittana Deva Krishnashu Mutta Sangha Param Bhajan. Although Kali Yuga is seen as an ocean of faults, there is still one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. So Maharaj, you have given that transcendental knowledge, and also in different days, you know, you have mentioned this thing, that a simple way, even today also you told that Krishna is very close to us as Paramatma, and also like the example you gave, that, you know, sky is there outside and inside. So Krishna is always with us because everything is emanating from Krishna. So now I'm going back to the same course again. You describe Maharaj, Prahlad Maharaj's teachings to his classmates in such a way that we felt going to the bygones era in the same classroom where you are in Prahlad Maharaj's footsteps and we the demon's children. Maharaj, Srila Prabhupada's missions you are carrying with zeal to give transcendental knowledge to unfortunate people like us by taking personal inconveniences. You are truest follower of Sri Chaitanya Mahaprabhu by delivering the Mahabhagavatam in a lucid way so that we the Vihumedi can get some glimpse of the pure love of Godhead, Sri Krishna. I am also indebted to you for this wonderful opportunity to release this Mahapurana from your mouth and request you to please come again and again and again to give us this nectar to us. Please forgive us for not able to serve you in the best way because of lack of transcendental knowledge. Yours in the service to Lord Chaitanya, your humble servant, Dulal, and so on.
Holiness Radha Govinda Das Goswami, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada.
As with the last 2 years, this third katha in New Jersey Tawako Temple has been most enlivening and invigorating. All throughout the year, I am so engrossed in worldly affairs and mundane household matters that I forget the importance and criticality of spiritual life. In this year's katha, you explain so nicely and simply, and in a way that is easy to understand, Prahlad Maharaj's instructions. Tat praya sona kartavyo yata ayur vyaparam na tatha vindate shemam mukunda charnara bhujam. Endeavors merely for sense gratification or material happiness are not to be performed, for they result only in a loss of time and energy with no actual profit. Tato yateta kashla shemaya bhavam ashrita shariram paurusham yavan na vipidyate pashkalam. Therefore, while in material existence, a person fully competent to distinguish wrong from right must endeavor to achieve the highest goal of life, as long as the body is stout and strong. These instructions are so wonderful, and it is clear that we should try to follow them, yet in real life they are so hard to apply. Instead, every day we are working so hard and doing so much parishram, and not understanding the real interest and purpose of life, and wasting this wonderful opportunity of human life, which is suitable for realizing the absolute truth. After having heard the wonderful instructions that Prahlad Maharaj gave to his demoniac schoolmates, I wished I was fortunate enough to be one of those Asura Balak. Dear Maharaj, as with every katha, you have given us a wake-up call to remind us that this human life which we are so fortunate to receive is very rare and that we are wasting it. Unfortunately, we are sneha poshe drudam bandham, bound by very strong ropes of affection and totally unable to free ourselves. How wonderful it would be if we could make our children understand these instructions and make their lives sublime also. In closing, Maharaj, please accept my thanks to you for this wonderful katha and also for the opportunity to get some of your personal association. In your presence, these last 11 days seem to go by so quickly, and my family and I were most fortunate to spend some time in your association. I would also like to thank all the Vaishnavas that also came here every day to eagerly hear the nectar of the Bhagavatam, for I know that it is only by their presence and eagerness to hear that you are inspired. I would also like to thank all the Matajis who made arrangements for prasadam. I know that this was hard to do and that they all made great personal sacrifices and had to sometimes choose between hearing the katha or making prasadam. Dear Maharaj, I also happen to know that at this time you have some open time in your schedule for 1999. Please consider doing another katha this year in New Jersey. We are eager to hear so many more topics from the Bhagavatam. Please show us your kindness by returning to New Jersey on your way back to India this year and continuing the katha of Prahlad Maharaj. And please recite the wonderful topics on the appearance of Lord Narasimhadev in the remaining chapters in Canto 7. Hare Krishna, the most fallen servant. As a small token of our appreciation, I have a set of this year's tapes that I would like to give you. I also have two more sets of this year's tapes people can get from me for a small donation. And any other people who would like sets, if they give me their name and address and number, we can get the cassettes ready and get them to you as soon as we can. Hare Krishna.